दादा भगवान प्ररूपित ज्ञानी पुरुष की पहचान संकलन डॉक्टर निरुबहन अमीन सीडी नंबर 2 ज्ञानी पुरुष की पहचान पेज 25 पे इस ऑडियो रिकॉर्डिंग चल रहा है। इसके पहले त्रिमंत्र नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वत्सायाणम नमो लोए सव साहुणम ऐसो पंच नमुकारो सव पावप्पणाशिणो मंगलाणम च सव्येसिम पढ़मं हवई मंगलम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद। ज्ञानी पुरुष पेज 25 मोक्ष याने मुक्त भाव सच्ची आजादी। कोई ऊपरी नहीं कोई अंडर हैंड भी नहीं, ऐसा मोक्ष संसार में रहते हुए भी प्राप्त करके संपूज्य श्री दादाश्री गृहस्थियों के लिए एक मिसाल बन चुके हैं, ताकि गृहस्थियों को भी हिम्मत रहे कि हम भी मोक्ष पा सकते हैं। और मोक्ष के लिए संसार त्याग की जरूरत नहीं, मगर अज्ञान दूर हो गया तो संसार में मोक्ष सहज प्राप्त हो जाता है। मोक्ष सुलभ है किंतु मोक्ष दाता अति अति दुर्लभ है, क्योंकि मोक्ष दाता ऐसे ज्ञानी पुरुष वर्ल्ड में कमी ही प्रकट होते हैं। यदि ऐसे पुरुष मिल जाए तो उनके चरणों में सर्व भाव अर्पण करके उनके पीछे पीछे चले जाना ही हितकारी है। ज्ञानी पुरुष के सिवा दुनिया में दूसरी कोई भी चीज हितकारी नहीं होती। उनके पास माया सदा के लिए विदा लेती है। संसार की माया जाल से सिर्फ ज्ञानी पुरुष ही छुड़ा सकते हैं, जो खुद मुक्त है वही दूसरों को बंधन से छुड़ा सकते हैं। खुद बंधन में फंसा है वह दूसरे को कैसे छुड़ा सकते हैं। जिसे सिर्फ मोक्ष की ही एकमेव कामना है, उसे तो किसी न किसी तरह मोक्ष मिले बिना नहीं रहता। अरे ज्ञानी पुरुष खुद उसके घर आकर घर जाकर उसके हाथ में मोक्ष देते हैं। इतना प्रभाव अपनी मोक्ष की तीव्र कामना में है। ज्ञानी पुरुष मिलने के बाद कुछ भी मेहनत करनी नहीं पड़ती। मेहनत का फल संसार है, मोक्ष नहीं। यदि ज्ञानी के मिलने के बाद कुछ मेहनत करनी पड़े तो ज्ञानी ही नहीं मिले। ज्ञानी मिलने पर तो ज्ञानी को कहना कि आपके मिलने के बाद अब मेहनत क्या करनी। मेहनत करके तो अनंत अवतार गए, कुछ फल नहीं आया। आपकी शरणागति स्वीकार की है, आप हमें बंधन से मुक्ति दियो। ज्ञानी मिले बिना किसी का मोक्ष होना संभवित नहीं है। प्रकट दिए से ही दूसरा दिया जलता है। ज्ञानी पुरुष अहंकार ममता को छुड़ाते हैं और शुद्धात्मा को ग्रहण कराते हैं। उनके चरणों में अहंकार पिघलाने का सामर्थ्य होता है। ज्ञानी पुरुष स्वयं शुद्ध होते हैं, इसलिए उनको देख के ही शुद्ध हो जाते हैं। नहीं तो ज्ञानी पुरुष बिना खुद का स्वरूप मिले ऐसा नहीं है। अरे अनंतम तार जाए तो भी न मिले ऐसा है, और ज्ञानी पुरुष मिलते ही सब मिल जाए ऐसा है। निज स्वरूप की भ्रांति कोई भी उपाय से जाती नहीं। वह तो ज्ञानी पुरुष ही भ्रांति को दूर कर सकते हैं। इसलिए श्रीमद् राजचंद्र जी ने कहा, कि प्रत्यक्ष ज्ञानी की खोज करो, सजीवन मूर्ति की खोज करो, जो स्वयं स्वयं मुक्त हुए हैं, ऐसे मुक्त पुरुष की खोज करना। ज्ञानी पुरुष तरण तारण होते हैं, वे खुद तो तैर गए किंतु अनेकों के तारने का सामर्थ्य उनमें होता है। ऐसे ज्ञानी पुरुष मिले तो उनके कदमों के पीछे पीछे निर्भय निशंक होकर चले जाना। ज्ञान ज्ञानी पुरुष के हृदय में ही होता है और कहीं नहीं। ज्ञानी पुरुष के पास ज्ञान प्राप्ति हो तो ही काम बनेगा, और ज्ञानी का आश्रित ही स्वच्छंद नाम का संसार रोग निर्मूल कर सकता है। ज्ञानी पुरुष के आश्रय बिना, उनकी आज्ञानुसार चले बिना जो कुछ भी किया, तप त्याग क्रिया या शास्त्र पढ़न किया, वह सब स्वच्छंद है और स्वसन से की गई तमाम क्रिया बंधन में डालती है। स्वच्छंद से की गई तमाम क्रिया बंधन में डालती है। लौकिक में शास्त्र के ज्ञानी को ज्ञानी कहते हैं, असल में तो ज्ञानी वही होता है कि जो आत्मज्ञानी हो। वे ज्ञानावतार होते हैं और ऐसे ज्ञानी पुरुष कभी गुप्त नहीं रहते। वे तो आम लोगों के बीच में ही पर्यटन करते रहते हैं। खुद को जो ज्ञान प्रकट हुआ है, खुद ने जिस सुख को पाया है, वही ज्ञान वही सुख दूसरे को लुटाते फिरते रहते हैं। पूर्ण दशा में पहुँचे हुए ज्ञानी पब्लिक में लोक कल्याण करते हुए विचरते हैं। संपूज्य दादाश्री कहते हैं कि हमारी यही भावना है कि ये अक्रम विज्ञान विश्व में फैलना चाहिए। अक्रम विज्ञान का लाभ लोगों को अवश्य मिलना चाहिए। जगत का कल्याण होना ही चाहिए। जगत में परम शांति प्रसरो। संसार में आत्मबुद्धि सच्चा मार्ग बताने वाले बतलाने के लिए गुरु करना आवश्यक है। संसार में अभिवृत्ति सच्चा मार्ग बतलाने के लिए गुरु करना आवश्यक है। गुरु सांसारिक सर्वधर्म सिखाते हैं, लेकिन संसार से वे मुक्ति नहीं दिखवा पाते। गुरु सांसारिक सर्वधर्म सिखाते हैं, लेकिन संसार से वे मुक्ति नहीं दिखा पाते। संसार से मुक्ति तो सिर्फ ज्ञानी पुरुष ही दे सकते हैं। संसार गुरु संसार व्यवहार पक्षी होते हैं, गुरु संसार व्यवहार पक्षी होते हैं और ज्ञानी पुरुष आत्म पक्षी होते हैं। व्यवहार में गुरु और निश्चय में ज्ञानी। ज्ञानी मिलने पर भी पहले के व्यवहार के गुरु पर अभाव नहीं करना और उनका उपकार मानना। मंजिल पाने के लिए मार्ग में भटकते हुए पथिक को तो किसी को रास्ता पूछना ही पड़ता है, किसी को गुरु बनाना ही पड़ता है। अरे स्टेशन का रास्ता नहीं मालूम, उसे किसी को रास्ता पूछना ही पड़ता है, तो फिर ये तो मोक्ष की गली छोटी सी भूल बुलावे वाली। इस मोक्ष पथ पर तो ज्ञानी पुरुष ढूंढकर उनके पीछे पीछे चले जाना। ज्ञानी पुरुष मोक्ष देने के लाइसेंसदार होते हैं। अपनी तैयारी चाहिए। ज्ञानी पुरुष के पास सिर्फ दो चीज़ों की आवश्यकता है, परम विनय और मैं कुछ ही नहीं जानता हूँ ऐसा भाव। परम विनय और मैं कुछ ही नहीं जानता हूँ ऐसा भाव। सच्चा जाना तो उसे कहा जाता है कि जिसके पश्चात ठोकर नहीं लगती। यदि ठोकर लगती है, चिंता क्लेश अशांति रहती है, तो फिर उसे मैं कुछ जानता हूँ किस तरह से कहा जाए? ये तो विश्व की अध्यात्म में नगद बैंक है, एक घंटे में ही डिवाइन सॉल्यूशन मिल जाता है, नहीं तो उधार कहाँ तक चलेगा, नहीं तो उधार कहाँ तक चलेगा। अनंत अवतार से उधारी बैंक में ही हफ्ते भरे हैं, नगद मिले तो काम बने। विश्व के लोग थियोरी ऑफ रिलेटिविटी में हैं, जिन्हें रियल और रिलेटिव का भेदभाव प्राप्त हो चुका है, वे महात्मा थियोरी ऑफ रिलेटिविटी में हैं, और ज्ञानी स्वयं थियोरी ऑफ एब्सोल्यूटिज्म में हैं। थियोरी ही नहीं बल्कि वो तो एब्सोल्यूटिज्म के थियोरम में होते हैं, थियोरी नहीं बल्कि वे तो एब्सोल्यूटिज्म के थियोरम में होते हैं। जर्मनी वाले हमारे भारतीय शास्त्रों को एब्सोल्यूटिज्म की खोज करने के लिए ले गए थे। आज ज्ञानी पुरुष खुद एब्सोल्यूट प्रकट हुए हैं, सारे विश्व के लोगों की खोज का अंत उनके पास ही होता है। ज्ञानी पुरुष थियोरी ऑफ रिलेटिविटी में से थियोरी ऑफ रियलिटी में ला सकते हैं, उसके बाद ही रियल धर्म, आत्मधर्म का, स्वधर्म का पालन होता है। जब तक आत्मा का एक भी गुण नहीं जाना, तब तक आत्मधर्म कैसे पाला जाता? तब तक सभी पर धर्म में ही है, तब तक सब भी पर धर्म में ही है। ज्ञान को ज्ञान में और अज्ञान को अज्ञान में बिठाना, ज्ञान को ज्ञान में और अज्ञान को अज्ञान में बिठाना, उसका नाम यथार्थ दीक्षा। ऐसी दीक्षा ज्ञानी पुरुष के अलावा कौन दे सकता है? जगत का स्वभाव अज्ञान प्रदान करना है और ज्ञानी पुरुष का स्वभाव ज्ञान प्रदान करना है। अज्ञान भी निमित्त से ही मिलता है और ज्ञान भी निमित्त से ही मिलता है। ज्ञानी पुरुष जब आत्मज्ञान प्रदान करते हैं, तब आत्मा अनात्मा के सारे गुण धर्म को स्पष्ट करके उन दोनों के बीच लाइन ऑफ डिमार्केशन डाल देते हैं। उसके बाद आत्मधारा और अनात्मधारा निरंतर अलग अलग ही रहती है। संसार को जड़ मूल से निर्मूल करने बहुत विरल पुरुष अनंत अवतार से प्रयास कर रहे हैं। कोई इस वृक्ष के पत्तों का काटा करते हैं, कोई इस वृक्ष के पत्तों को काटा करते हैं तो कोई उसकी डालियों को, कोई उसके मुख्य थड़ को काट कर रखते हैं, फिर भी वह वृक्ष, संसार का वो वृक्ष निर्मूल नहीं होता। ज्ञानी पुरुष संसार वृक्ष के मुख्य मूल, मेन रूट को भली तरह से पहचानते हैं, इसलिए वह उसमें ही दिखाई रख देते हैं, इसलिए वह उसमें ही दवाई रख देते हैं, जिससे पेड़ के कोई भी हिस्से को हिलाए बिना खुद बखुद पेड़ खत्म हो जाता है। ये अक्रम विज्ञान की बहुत बड़ी देन है, नहीं तो एक घंटे में मोक्ष, एक अवतारी पद कैसे प्राप्त हो सकता है? संसार के तमाम धर्मशास्त्रों को पढ़कर 100% धर्म धारण करने के बाद धर्म का मर्म निकलना शुरू हो जाता है। 100% मर्म समझने में आने के बाद ज्ञानार्क निकलने की शुरुआत होती है। अक्रम मार्ग के ज्ञानी पुरुष एक घंटे में ज्ञानार्क पिला देते हैं। मोक्ष में जाने के लिए दो मार्ग है, एक क्रमिक मार्ग, दूसरा अक्रमिक मार्ग। क्रमिक ये आम रास्ता है, हमेशा का मार्ग है, उसमें साधक को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने का रहता है। कोई सच्चा साथी मिल गया तो 500 स्टेप बढ़ा देता है और कुसंग मिल गया तो 5000 स्टेप्स उतार देता है। इसलिए इस मार्ग का भरोसा नहीं है। फिर भी आम तौर पर यही मार्ग हमेशा होता है। अक्रम मार्ग तो कभी ही होता है, अक्रम मार्ग तो कमी कम ही होता है, कभी कभी होता है, जो अपवाद मार्ग है। इसमें स्टेप्स नहीं चढ़ना है, लिफ्ट में सीधा है, बिना श्रम से ऊपर बढ़ना है, सिर्फ ज्ञानी की आज्ञा के अनुसार लिफ्ट में बैठना है, सिर्फ ज्ञानी की आज्ञा के अनुसार लिफ्ट में बैठना है। ज्ञानी पुरुष एक घंटे में आत्मज्ञान कराते हैं और साथ में तमाम धर्मों के निचोड़ स्वरूप पांच आज्ञाएं देते हैं, जो जीवन व्यवहार को आदर्श बनाकर आत्मा में निरंतर रहने में सहायभूत और रक्षक होती हैं। क्रमिक मार्ग में तो क्रोध, मान, माया, लोभ, परिग्रह आदि का धीरे धीरे त्याग करते करते अंत में अहंकार संपूर्ण शुद्ध हो जाता है, यानी कि अहंकार में एक भी परमाणु क्रोध का, मान का, माया का या लोभ का नहीं रहता, तब संपूर्ण शुद्ध अहंकार बनता है। वो शुद्ध अहंकार शुद्धात्मा से अभेद हो जाता है और अक्रम मार्ग में ज्ञानी की कृपा से पहले अहंकार शुद्ध हो जाता है और खुद शुद्धात्मा पद में आ जाता है। फिर डिस्चार्ज क्रोध, मान, माया, लोभ रह जाते हैं, उनके उदय में शुद्धात्मा तन मायाकार नहीं होता, इसलिए वे स्वभाव से डिस्चार्ज होकर खत्म हो जाते हैं। खुद शुद्धात्मा हो गया इसलिए नए कर्म नहीं चार्ज होते। नया कर्म तो तभी चार्ज होता है कि जब मन की अवस्था में खुद अवस्थित हो जाता है, उसका रिजल्ट व्यवस्थित आता है। ज्ञानी पुरुष अहंकार को शुद्ध कर देते हैं, सूक्ष्म क्रियाओं में भी बाद में खुद अलग रहते हैं, उससे कर्तापद उत्पन्न ही नहीं होता और कर्म चार्ज नहीं होता, खुद निरंतर अकर्ता भाव में रहते हैं। उतना ही नहीं, व्यवस्थित किस तरह से करता है उसका संपूर्ण दर्शन रहता है। कर्ता पद छूट गया तो कर्म नहीं बंधता। क्रमिक मार्ग का बेसमेंट आज सड़ गया है। इस वजह से क्रमिक मार्ग फ्रैक्चर हो गया है, इसलिए अक्रम मार्ग का भव्य उदय कुदरती तौर से हुआ है। क्रमिक मार्ग का बेसमेंट क्या है? मन, वचन, काया का एकात्म योग होना, यानि मन में जो है वही वाणी से बोलता है और वही वर्तन में आता है। आज तो मन में एक, वाणी में दूसरा और वर्तन में तृतीयम ही होता है, इसलिए क्रमिक मार्ग चल नहीं सकता। अक्रम मार्ग में तो मन, वचन, काया को साइड पर रख कर निज स्वरूप का निरंतर लक्ष्य बैठ जाता है। फिर तो जैसा उदय आता है उसका संभाव से निकाल कर देने का रहता है। जीवन व्यवहार के रोज बरोज के ज्ञान की इतनी ही स्पष्टता की है दादाश्री ने जितनी आत्मा परमात्मा की। उनके पास केवल आत्मा परमात्मा की ही बातें नहीं है, रोज बरोज अनुभव में आती हुई संसार व्यवहार की ज्ञानमय दृष्टि की बातें भी हैं। इस व्यवहार से ऐसे बाहर से भागकर तो नहीं छूट सकते, किंतु व्यवहार में संपूर्ण नाटक की तरह सुंदर अभिनय अदा करते करते व्यवहार पूरा करने का है। नाटक में राजा भर्तृहरि का अभिनय करता है, राजा भर्तृहरि का अभिनय करता है, वह नट लक्ष्मीचंद और भर्तुहरि का अभिनय अलग ऐसे रखता है, उसी तरह पति का, शेठ का, पिता का अभिनय करने वाला अलग और स्वयं शुद्धात्मा अलग, ये भेद रेखा को कायम हाजिर रखकर इस जीवन नाटक के सामने आई हुई हर अदाकारी पूर्ण वफादारी से सदा करने की प्रतिक्षण जागृति अक्रम विज्ञान द्वारा ज्ञानी पुरुष प्रदान करते हैं। अर्थात ज्ञानी पुरुष सिर्फ आत्मज्ञान ही नहीं देते, बल्कि संसार व्यवहार का निकाल करके करने के लिए व्यवहार ज्ञान भी सर्वोच्च प्रकार का देते हैं। उनकी पांच आज्ञाएं व्यवहार को संपूर्ण शुद्ध बना देती है। दादा श्री वही दृढ़ता से हमेशा कहते हैं कि मुझे मिलने के बाद अगर तुम्हें मोक्ष अनुभव में न आए तो तुम्हें ज्ञानी मिले ही नहीं, यहीं पर सदेह मोक्ष वर्तना में आ जाना चाहिए। पक्ष और मोक्ष दोनों विरोधाभास है। ज्ञानी पुरुष निष्पक्षपाती होते हैं, उनकी दृष्टि में सभी अपनी अपनी जगह पर करेक्ट ही दिखते हैं। जीवन मात्र के साथ जीव मात्र के साथ अभेद रहते हैं। ज्ञानी पुरुष सेंटर में बैठे हुए हैं, इसलिए उन्हें कोई व्यक्ति से, कोई धर्म से, कोई व्यू पॉइंट से मतभेद नहीं होता। विनाशी वस्तुओं में सनातन सुख की शोध के लिए यह दृष्टि अनंत अवतार से भटकती है। इस मिथ्यात्व दृष्टि को लोक दृष्टि और भी अवगाढ़त्व देती है। लोक दृष्टि तो दक्षिण को उत्तर मानकर चलाती है। एक बार ज्ञानी की दृष्टि से दृष्टि मिल जाए, एक हो जाए, तो निज स्वरूप दृष्टि में आ जाता है। निज स्वरूप में ही सनातन सुख है, जिसका एक बार अनुभव हो जाता है फिर वह कभी नहीं जाता। फिर दृष्टि की विनाशी वस्तुओं में सुख की खोज पूरी हो जाती है और अविनाशी आत्मतत्व का, स्वाभाविक सुख का वेदन निरंतर रहता है। शक्कर मीठी होती है, शक्कर मीठी होती है, ऐसी मीठी होती है शहद से भी अच्छी, गुड़ से भी उम्दा, ऐसा वर्णन हम सुनते हैं। किंतु कोई शक्कर मुंह में डालकर उसके स्वाद का स्वयं अनुभव नहीं कराता। ज्ञानी पुरुष के ही ऐसे हैं जो तुरंत ही मुंह में शक्कर रखकर अनुभव कराते हैं, आत्मा ऐसी है, वैसी है, ऐसी बातों से कुछ नहीं बनता। वह तो ज्ञानी पुरुष की कृपा से उनकी अनुभूति हो तब छुटकारा होता है, अन्यथा नहीं। तमाम शास्त्र नई दृष्टि दे सकते हैं, किंतु दृष्टि कोई नहीं बदल सकता। दृष्टि बदलना तो ज्ञानी पुरुष के सिवाय नामुमकिन है। अवस्था दृष्टि को मिटाकर आत्मदृष्टि कराना, ये लेवल ज्ञानी पुरुष का काम का है। जिसकी आत्मदृष्टि हुई है, जो अन्यों को आत्मदृष्टि करा सकते हैं, खुद मिथ्या दृष्टि वाला है, वो दूसरे की मिथ्या दृष्टि कैसे तोड़ सकता है। आत्मा निरालंब वस्तु है, किंतु उसे पाने के लिए ज्ञानी पुरुष का आलंबन लेना पड़ता है, क्योंकि आत्म प्राप्ति का ज्ञानी पुरुष अंतिम साधन है। अक्रम ज्ञानी ने जो आत्मा देखी है, अनुभव की है, वह आत्मा कुछ और है, कल्पनातीत है। इसलिए तो वे जो लाखों जन्मों में नहीं बदली जाती, वह दृष्टि एक घंटे में बदल देते हैं। एक घंटे में देह और आत्मा को भिन्न अनुभव कराने वाला ज्ञानी की अपूर्व, अजोड़, अद्भुत सिद्धि के प्रति सानंद आश्चर्य अव्यक्तव्य भाव सबर उद्गार से के सिवाय अन्य क्या हो सकता है। एक बार तो एतवार नहीं आता, किंतु ज्ञानी पुरुष के प्रत्यक्ष योग की युक्ति करके सर्व भाव चरणों में समर्पित करके परम विनय से आत्म प्राप्त जो कर लेता है, उसकी तो दुनिया ही बदल जाती है। फिर से, एक बार तो एतवार ही नहीं आता, किंतु ज्ञानी पुरुष के प्रत्यक्ष योग की युक्ति करके सर्व भाव चरणों में समर्पित करके परम विनय से आत्मा प्राप्त जो कर लेता है, उसकी तो दुनिया ही बदल जाती है। संसार के सारे दुखों से मुक्ति मिलती है, संसार की आधि व्याधि और उपाधि में निरंतर समाधि, सहज समाधि रहती है। वाचक को इस बात पर एतबार नहीं आए ऐसी ये बात है, किंतु ये अनुभवपूर्ण हकीकत है। आज 20,000 पुण्यात्माओं ने ऐसी प्राप्ति की है और भीतर में निरंतर आत्मसुख में रहते हैं, और बाहर जीवन व्यवहार में, घर में, इस घोर कलियुग में भी सतयुग जैसा, स्वर्ग जैसा सुख पा रहे हैं। बलिहारी तो उस ज्ञान की है जो इस काल में, धूप काल के रण में, मध्यान के समय में विशाल वट वृक्ष के समान होकर अपनी शीतल छाँव में तप्त जनों को भीतरी बाहरी शीतलता प्रदान करती है। निरंतर निरंतर आत्मा में ही जिनका वास है, जो केवल मोक्ष स्वरूप हो गए हैं, जिनका मन वचन काया का मालिकी भाव संपूर्ण खत्म हो चुका है, अहंकार ममता संपूर्ण विलय हो गए हैं, ऐसे ज्ञानी पुरुष आज कलिकाल में सच्चे मुमुक्षों के लिए ही प्रकट हुए हैं। हर रोज अलौकिकता के दर्शन नए नए रूप से बरसों से होते रहते हैं। असीम को कलम से कैसे सीमित किया जाए, फिर भी ज्ञानी पुरुष का अल्प परिचय कागज कलम की मर्यादा में रहकर दिया है। संपूर्ण अनुभव तो उनके प्रत्यक्ष योग से ही उपलब्ध होता है। संपूज्य दादाश्री गुजराती भाषी है, किंतु हिंदी भाषियों के साथ कभी कभी हिंदी में भी बोल लेते थे। उनकी हिंदी प्योर हिंदी नहीं है, फिर भी सुनने वाले के उनका अंतराशय एग्जैक्ट पहुंच जाता है। उनकी वाणी हृदय स्पर्शी, हृदय भेदी होने के कारण जैसी निकली वैसी ही संकलित करके प्रस्तुत की गई है, ताकि सुग्न वाचक को उनके डायरेक्ट शब्द पहुँचे। उनकी हिंदी यानी गुजराती, अंग्रेजी और हिंदी का मिश्रण फिर भी सुनने में, पढ़ने में बहुत मीठी लगती है, नेचुरल लगती है, जीवंत लगती है। जो शब्द है वो भाषा की दृष्टि से सीधे साधे हैं, किंतु ज्ञानी पुरुष का दर्शन निरावरण है, इसलिए उनके प्रत्येक वचन आशयपूर्ण, मार्मिक, मौलिक और सामने वाले के व्यू पॉइंट को एग्जैक्ट समझकर निकलने के कारण श्रोता के दर्शन को सुस्पष्ट खोल देते हैं और ऊंचाई पर ले जाते हैं। ऐसे ज्ञानी पुरुष का दर्शन ज्ञान, चारित्र, उनकी अनुभव दशा, उनका ऑब्जर्वेशन आदि वाणी से ही प्रकट होता है। वह वाणी प्रस्तुत ग्रंथ में प्रकाशित की गई है, जो ज्ञानी की पहचान करा देती है। इतना ही नहीं, सुग्नवाचक को नई दृष्टि, नई राह, मोक्ष पथ काटने को देती है। ऐसे ज्ञानी पुरुष लाखों लोगों के पुण्योदय से भारत भूमि पर, गुजरात की चरोतर भूमि में भादरण गांव में प्रकट हुए, जो इस विश्व में किस तरह शांति हो, किस तरह लोग आत्मज्ञान पाकर संसार के चक्र से छूटे, ये भावना को साकार करने के लिए दिन रात जुटे हुए रहते थे। उनकी वाणी ही एकमेव ऐसा साधन है कि जो उनके भीतर में प्राप्त हुए ज्ञान को आम जन तक पहुंचा सके। वर्षों से सुबह 6:30 बजे से रात को 11:30 बजे तक वे अविरत आत्मा, परमात्मा तथा संसार की उलझनों का सुझाव लोगों की अपनी वाणी से देते रहते थे। उस वाणी को प्रस्तुत ग्रंथ में संकलित किया गया है। हृदयपूर्वक की भावना है कि जो भी कोई मुमुक्षु, जिज्ञासु या विचारक उसका सम्यक प्रकार से अध्ययन करेगा, उसे अवश्य सम्यक मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। ज्ञानी पुरुष की वाणी सरल होती है, अहंकार के बिना, प्रगट परमात्मा को डायरेक्ट स्पर्श करके निकली हुई ये साक्षात सरस्वती है। ये वाणी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और निमित्त के अधीन निकलती है। प्रस्तुत ग्रंथ में संकलित की हुई इस वाणी में सुग्नवाचक को यदि कभी गलती लगे तो वह क्षति ज्ञानी की वाणी में नहीं बल्कि संकलन की है, जिसके लिए हृदय से क्षमा प्रार्थना। साइन किया हुआ है डॉक्टर निरुबहन अमीन के। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। दादा भगवान प्ररूपित ज्ञानी पुरुष की पहचान, संकलन डॉक्टर निरुबहन अमीन। अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये दादा भगवान का सत्संग अभी शुरू होता है। ये बुक में, दिस इज सीडी नंबर 2 ऑडियो बुक, इसकी अभी अनुक्रमणिका शुरू होती है। 19 चैप्टर्स हैं। पहला व्यवहार में और वास्तव में वाणी का वक्ता कौन है, दूसरा ज्ञानी पुरुष कौन और दादा भगवान कौन, तीसरा बिना अनुभूति बातें क्या, चौथा गुरु और ज्ञानी, पांचवा खुली आँख से जागृत कौन, सिक्स मोक्ष मार्ग में गुरु या ज्ञानी, सेवन प्रभु को पहचाना, एट ज्ञानी बिना दृष्टिभेद कौन कराए, नाइन ज्ञानी पुरुष किसे कहा जाए, 10 भगवान प्रेम स्वरूप या आनंद स्वरूप, 11 विवेक विनय परम विनय, 12 प्रत्यक्ष भक्ति किस पुरुष की, 13 अंत में वेद क्या कहते हैं, 14 आत्म प्राप्ति शास्त्र से या ज्ञानी से। 15. ये चमत्कार या यश नाम कर्म। 16. ज्ञानी कारण सर्वज्ञ। 17. रियल में और रिलेटिव में ज्ञानी की ज्ञान दशा। 18. ज्ञानी कृपा दृष्टि का फल। 19. ज्ञानी पुरुष की पहचान ज्ञानी द्वारा। ज्ञानी पुरुष की पहचान ज्ञानी द्वारा। जय सच्चिदानंद। अभी सत्संग शुरू होता है। सर्वज्ञ श्री दादा भगवान और जिसके भीतर प्रकट हुए थे वो ज्ञानी पुरुष दादा श्री के साथ अभी सत्संग होता है, शुरू होता है। ज्ञानी पुरुष की पहचान व्यवहार में, वास्तव में वाणी का वक्ता कौन है। दादाश्री कहते हैं, पूछते हैं, दादाश्री पूछते हैं, दादा भगवान को कभी देखा था आपने? प्रश्नकर्ता, आज ही देख रहा हूँ भगवत कृपा से, आपके आशीर्वाद से। दादाश्री, ये दादा भगवान नहीं है, ये तो A.M. पटेल हैं। ये शरीर तो भगवान होता ही नहीं है, अंदर भीतर में चैतन्य है, वो ही भगवान है, वो दादा भगवान है, 14 लोक का ये नाथ है, ये आपके साथ कौन बात कर रहा है? प्रश्नकर्ता जवाब देते हैं, भीतर में आत्मा है, वो बात करती है। दादाश्री, नहीं, जो आपके साथ बात करती है वो ओरिजिनल टेप रिकॉर्ड है, इसके आगे ओरिजिनल टेप रिकॉर्ड नहीं है। उससे कितनी भी टेप रिकॉर्ड निकल सकती है, तो ये जो बात करती है वो ओरिजिनल टेप रिकॉर्ड है, वो ही बोलती है, वो मैं नहीं बोलता हूँ, दादा भगवान भी नहीं बोलते हैं। दादा भगवान बोले तो वो भगवान ही नहीं है, भगवान तो भगवान ही है। जो दादा भगवान है ना, वो तो ओरिजिनल टेप रिकॉर्ड क्या बोलती है, सच्ची बात है कि झूठी बात है, वे तुरंत समझ जाते हैं। ये वाणी आप सुनते हैं तो आप श्रोता हैं, ये टेप रिकॉर्ड वक्ता है, और हम ये वाणी को देखते हैं, ज्ञाता दृष्टा रहते हैं। हम सुपरविजन करते हैं कि इसमें कोई क्या भूल है, किधर भूल है, किधर नहीं, किसी को नुकसान करे ऐसी वाणी है तो ऐसी नहीं होनी चाहिए, वो सब देखते हैं। आपके अंदर भी ओरिजिनल टेप रिकॉर्ड है, मगर आपको इगोइज्म, अहंकार है कि हमने बोला, ओहो हो, बोलने वाला आया। आप इगोइज्म से बोलते हैं कि हमने बोला, मगर वो अंदर ओरिजिनल टेप रिकॉर्ड है, वो बोलता है। सब लोग बोलते हैं कि हमने बोला, लेकिन आदमी के अंदर भी टेप रिकॉर्ड बोलता है, कुत्ते की भी टेप रिकॉर्ड बोलता है, कुत्ते में भी टेप रिकॉर्ड बोलता है, गधे में भी रिकॉर्ड बोलता है, सभी रिकॉर्ड ही है। वकील भी बोलता है, हमने बोला, हमने ऐसा प्लीडिंग किया, तो आप बोलेंगे कि भाई आप आज आपने गलती क्यों किया, तो बोलेगा कि आज मेरे से भूल हो गई। आप बोलने वाला हो तो फिर गलती नहीं होनी चाहिए। कितनी दफ़े ऐसा भी बोलते हैं ना कि हमारे को ऐसा नहीं बोलने का था मगर बोल दिया, तो ये सिर्फ रिकॉर्ड ही है। कोई टेप रिकॉर्ड बोले कि रविंद्र अच्छा नहीं, तो क्या आपको बुरा मानने का? टेप रिकॉर्ड बोलती है, इसमें हमें क्या, हमें तो भ्रांति है कि ये आदमी हमको बोलता है, मगर ये तो आदमी नहीं बोलता है, टेप रिकॉर्ड बोलती है। ये नहीं समझने से ही सब झगड़े हैं, कोई आदमी बोलता ही नहीं है, कोई आदमी बोलता ही नहीं है, मगर ये जानता है कि हम बोलते हैं, तो फिर उसका पश्चाताप भी होता है कि हम ऐसा क्यों बोल गए। और ये तो टेप रिकॉर्ड बोलती है, तो आपको बुरा नहीं लगाने का, बात समझ जाने की है। प्रश्नकर्ता, ये ओरिजिनल टेप रिकॉर्ड झूठ क्यों बोलती है? प्रश्नकर्ता, दादाश्री कहते हैं, वो जो जैसी पहले टेप हो गई ना है ऐसी निकलती है, उसमें चेतन यानी आत्मा दूसरा कुछ नहीं कर सकता है। आपका भाव कैसा है कि झूठ बोलना चाहिए तो टेप झूठी निकलेगी, सच ही बोलना चाहिए तो टेप सच्ची निकलेंगी? आप खाली भाव ही कर सकते हैं तो वैसा टेप हो जाता है। आपके अंदर टेप है कि नहीं? प्रश्नकर्ता जवाब देते हैं, हमको जानकारी नहीं है, लेकिन आप बोल रहे हैं तो मैं जान लेता हूँ कि ये भी ओरिजिनल टेप है। दादाश्री, नहीं ऐसा नहीं, वो ओरिजिनल टेप रिकॉर्ड ही है, ये आपको अंदर है, ये आपके अंदर है और सबके अंदर है, लेकिन इगोइज्म से बोलता है कि मैंने बोला। हम इगोइज्म ख़त्म, हमारा इगोइज्म ख़त्म हो गया तो हमने देख लिया कि ये टेप रिकॉर्ड बोलती हैं, हम खाली देखते हैं कि ये टेप रिकॉर्ड है क्या बोलती है। कोई लोग अच्छा काम करते हैं तब मैंने कितना अच्छा किया ऐसा इगोइज्म करते हैं, और बुरी बात निकल जाए तो क्या बोलते हैं, मी काय करूँ, मैं काय करूँ, ऐसा बोलते हैं ना। वो आप बोलते ही नहीं, मगर व्यवहार में आपको ऐसा बोलना चाहिए कि मैं बोलता हूँ। वहाँ ऐसा नहीं बोलना कि ये टेप रिकॉर्ड है, मैं नहीं बोलता हूँ। किसी को हमारा हाथ लग गया और पुलिस वाला बोले कि किसने मारा, तो हम बोलेंगे कि हमने मार दिया। व्यवहार में ऐसा हम नहीं बोलेंगे कि हम करता नहीं हैं, व्यवहार में तो हमने ही किया है ना, ऐसा बोलेंगे। लेकिन ये शरीर के मालिक हम नहीं हैं और कोई चीज़ के कर्ता हम नहीं हैं। कोई बड़ा व्यक्ति से, कोई बड़ा व्यक्ति भी बोलता है कि मेरी आत्मा बोलती है, मगर आत्मा कभी बोलती ही नहीं, आत्मा की आवाज़ ही नहीं है, वो सब अनात्मा की आवाज़ है। मोटर का हॉर्न रहता है ना, वो हॉर्न से आवाज़ आती है, हॉर्न दबाया तो अंदर जो परमाणु थे वो परमाणु स्पीड से बाहर निकलते हैं और उसके घर्षण से आवाज़ हो गई। भगवान बोलेंगे तो उनका भगवान पद ही चला जाएगा, फिर तो लोग उनको रेडियो बोलेंगे, मगर भगवान नहीं बोलते हैं। ये ओरिजिनल टेप रिकॉर्ड है, भगवान की हाजिरी से ही रिकॉर्ड बोलती है। भगवान की हाजिरी चली जाए फिर टेप रिकॉर्ड नहीं बोलेंगी। ये मशीन में भगवान की हाजिरी नहीं है, वह तो ऐसे ही भगवान की हाजिरी के बिना बोलती है। नेक्स्ट सब हेडिंग आता है, ज्ञानी पुरुष कौन, दादा भगवान कौन? प्रश्नकर्ता, आपको जो ज्ञान प्राप्ति हुई है वो ज्ञान किसी ने दिया? वो ज्ञान किसी ने दिया होगा, स्वयं तो नहीं हुआ है ना? दादाश्री जवाब देते हैं, हमको किसी ने नहीं दिया है, हमको तो ऐसे ही हो गया था। ये ज्ञान किसी के पास से नहीं मिला है, और ये ज्ञान किसी के पास है भी नहीं। कलयुग में ये ज्ञान कभी होता ही नहीं है। ये हमारे अंदर दिया प्रकट हो गया है तो एक दिए से दूसरे दिए हो सकते हैं, मगर पहला दिया जो हमारे भीतर प्रकट हुआ हो सकता ही नहीं है, ये तो बट नेचुरल हो गया। प्रश्नकर्ता, ज्ञानी पुरुष की पहचान करनी भी मुश्किल होती है कभी कभी? दादाश्री, हाँ, ज्ञानी की पहचान जल्दी नहीं हो सकती। वो सब साधु पुरुष है, वो ज्ञानी होते हैं, लेकिन वे शास्त्र के ज्ञानी हैं, उससे मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष तो सच्चे ज्ञानी पुरुष मिल जाए तो मोक्ष का दान देते हैं। हम तो कोट टोपी पहनते हैं तो कोई पहचान नहीं कर सकेगा बाहर। जिसका पुण्य हो उसको मिल जाएंगे, ऐसे ड्रेस में कौन समझेगा कि ये ज्ञानी है। अनजान आदमी कैसे जान सकता है कि ज्ञानी पुरुष क्या चीज़ है, वो तो जब अनुभव में आए तब पता चलता है। गाड़ी में बाहर कोई आदमी हमको मिल जाए तो हमको पूछेगा कि आप कौन हैं, तो हम बोलेंगे कि ये गाड़ी का पैसेंजर हूँ। इनकी दृष्टि में जो दिखता है वैसा हम बोलेंगे। ज्ञानी पुरुष किसको बोला जाता है? जो एक मिनट भी ये देह में नहीं रहते हैं, ये वाणी में नहीं रहते हैं और ये माइंड में मन में नहीं रहते हैं, होम डिपार्टमेंट में ही रहते हैं। आप तो फॉरेन डिपार्टमेंट में ही रहते हो और फॉरेन को ही होम मानते हो। फॉरेन को होम मानने में क्या फ़ायदा मिलेगा? कभी न कभी तो होम को होम मानना ही पड़ेगा ना। होम को होम मानेगा तो सच्ची समाधि हो जाएगी। जो सनातन सुख की इच्छा है लोगों की, वो तो होम डिपार्टमेंट में आ जाएंगे, तब उन्हें सनातन सुख मिल जाएगा। ज्ञानी तो निरंतर ज्ञान में ही रहते हैं। ये जो दिखते हैं ना, ये जो दिखता है ना, वो एम पटेल है, लेकिन आज एम पटेल पब्लिक ट्रस्ट में चले गए हैं, क्योंकि ये बॉडी का, ये माइंड का, ये वाणी का मैं 26 साल से मालिक नहीं हूँ। 1958 से हम देह में एक पल भी नहीं रहे। कभी आपके साथ बात करते हैं तो हमारे को इधर आना पड़ता है, वो भी प्रकाश स्वरूप में, ज्ञान स्वरूप में। हम ये देह में 26 साल से नहीं रहते, हमारे इसके साथ पड़ोसी जैसा संबंध है। ये जो दादा भगवान है ना, सारा दिन दादा भगवान के साथ नहीं रह सकते। कभी कभी हमारे को पटेल हो जाना पड़ता है, तो हमारे को भी बोलना पड़ता है कि दादा भगवान को नमस्कार करता हूँ। और जब हम और दादा भगवान एक हो जाते हैं फिर नहीं बोलना पड़ता, फिर जब अलग हो जाते हैं तो फिर बोलना पड़ता है। वो दादा भगवान अंदर है, 14 लोक के नाथ है। वो दादा भगवान का नाम लिया तो आपका भी बहुत काम हो जाएगा। सब लोग जानते हैं कि यहाँ सत्संग होता है, मगर इधर क्या दवाई मिलती है वो नहीं जानते। ये तो दुनिया का ऐसा आश्चर्य है जो पहले कभी नहीं हुआ। तो हम आपको क्या बोलते हैं कि आप आपका काम निकाल लो इधर। हम तो निमित है, हम कोई चीज के करता नहीं हैं। जो करता है उसको कर्म बंध जाता है। हम ये दुनिया को सब चीज़ देने के आए हैं, हम ये दुनिया को सब चीज़ देने को आए हैं, मगर निमित है सिर्फ। भी नेक्स्ट हेडिंग आता है, बिना अनुभूति बातें क्या? प्रश्नकर्ता पूछते हैं, मनुष्य जन्म में आफ्टर ऑल क्या पाने के लिए हम जीते हैं? दादाश्री, अपने पर बॉस नहीं चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। कोई गाली दे, मार मारे तो भी तकलीफ नहीं, ऐसा होना चाहिए। प्रश्नकर्ता, ज्ञान लेने का आफ्टर ऑल मकसद क्या है? दादाश्री जवाब देते हैं, साक्षात्कार। प्रश्नकर्ता, किसका साक्षात्कार? दादाश्री, खुद का। अभी तो आप रविंद्र हैं। प्रश्नकर्ता, उसके बाद में क्या? दादाश्री, फिर आप इंडिपेंडेंट हो जाएगा। प्रश्नकर्ता, कब तक? दादाश्री, फिर मरने का ही नहीं। ज्ञान लेने के बाद मृत्यु नहीं, अमर हो जाता है। प्रश्नकर्ता, कैसे अमर? इन व्हाट सेंस? दादाश्री, शरीर में नहीं। जो विनाशी चीज है वो विनाशी चीज निकल जाती है। आप खुद ही अविनाशी है, लेकिन आप मानते हैं कि मैं रविंद्र हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, ऐसी विनाशी चीज़ों की बातें करते हैं आप फिर अविनाशी हो जाओगे, फिर आपको कुछ फियर भय नहीं होगा। प्रश्नकर्ता, मगर अपने खुद का रेफरेंस हमें कैसे मिले कि मैं कौन हूँ? दादाश्री, वो रेफरेंस सब मिल जाएगा, फिर आप पूर्ण हो जाओगे। प्रश्नकर्ता, अमर हो गया तो कौन सी विनाशी चीज़ निकल जाएगी? दादाश्री, ये शरीर जो विनाशी है। प्रश्नकर्ता, तो फिर क्या रहेगा? क्या रहेगा? दादाश्री, आत्मा रहती है, वो भी इन परफेक्ट सेंस। प्रश्नकर्ता, तो अपनी खुद आत्मा में ही रहना चाहिए? दादाश्री, आप आत्मा में ही रहेंगे, हम 25 साल से आत्मा में ही रहते हैं। दिस बॉडी इज़ माई फर्स्ट नेबर, आई एम नॉट द ओनर ऑफ दिस बॉडी एंड दिस इज़ द पब्लिक ट्रस्ट। प्रश्नकर्ता, अपनी आत्मा में ही रहे, मगर ये आत्मा तो भटकेगी ना? दादाश्री, नहीं, वो भटकेगी नहीं, वो निरंतर समाधि में ही रहती है। 25 साल से हमारी समाधि नहीं गई, एक मिनट भी नहीं गई, फिर भटकने का है ही नहीं, फिर अपने अपनी स्पेस में चले जाने का, वो परमानेंट स्पेस है, वहाँ जाने का, वहीं मोक्ष है। प्रश्नकर्ता, उसका अनुभव होना चाहिए, कहने से क्या होता है? दादाश्री, हाँ, अनुभव तो आप इधर बैठे हैं तभी से अंदर अनुभव शुरू हो गया है कि, लेकिन आपको इसका ख्याल नहीं रहता है। अनुभव तो होना चाहिए, बिना अनुभव तो क्या करने का? वो आइसक्रीम खाते हैं तो वो भी ठंडा लगता है, तो ये ज्ञानी पुरुष मिले तो वो एक घंटे में मोक्ष देते हैं, फिर कभी चिंता नहीं होगी। प्रश्नकर्ता, वो अनुभव हमें कहोगे? दादाश्री, वो अनुभव तो हम जब करवाते हैं वो ही दिन से आता है। अनुभव में नहीं आए तो फिर क्या काम का? अनुभव में नहीं आए तो वो सभी कल्पित बातें हैं, सच्ची बात नहीं है। अनुभव तो होना ही चाहिए। रविंद्र का नाम अपने यहाँ एक महात्मा था, रविंद्र नाम का अपने यहाँ एक महात्मा था, वो एसिड से जल गया था, तो सब डॉक्टर लोग बोलने लगे कि आदमी 3 घंटे में मर जाएगा, उसको साइकोलॉजी इफेक्ट हो क्या होगी कि मैं जल गया हूँ, मेरे को हो गया है, लेकिन उसको ये ज्ञान दिया था, वो अनुभव ज्ञान था, तो उसको ऐसा लगा कि मेरे को कुछ नहीं हुआ है, रविंद्र को ही हुआ है। वो डॉक्टर को भी बोलता था कि रविंद्र को ऐसा हो गया है, मेरे को नहीं। वो बच गया, 6 महीने बिस्तर में था, मगर 1 मिनट भी पीस ऑफ माइंड नहीं गया। ऐसा एक्सपीरियंस होना चाहिए। अनुभव बिना क्या करने का? कोई अवतार में ऐसी बात होती ही नहीं। ये बात अपूर्व बोली जाती है, ये बात अपूर्व बोली जाती है, पहले कभी सुनने में नहीं आई हो, पढ़ने में नहीं आई हो। ज्ञानी पुरुष देते शुद्ध चेतन निरपेक्ष वो सार है। नवनीत, नवनीत जी ने एक कविता में लिखा है, ज्ञानी पुरुष देते हैं शुद्ध चेतन निरपेक्षित वो सार है। ज्ञानी पुरुष कहते हैं, दादाश्री कहते हैं, ज्ञानी पुरुष जब आत्मा देते हैं वो ही निरपेक्षित सार है। ज्ञानी पुरुष का अपना खुद का मोक्ष हुआ है, इसलिए दूसरे को मोक्ष देते हैं, वो मोक्ष का दान देते देने को आए हैं, उन्हें मोक्षदाता बोला जाता है। ये क्रिश्चियनिटी वो दीवादांडी है, ये मोमेडियन वो दीवादांडी है, ये हिंदू धर्म वो भी दीवादांडी है। कोई बड़ी है कोई छोटी है, मगर सब दीवा दांडी है। दीवा दांडी को क्या बोलते हो आप? लाइट हाउस, प्रश्नकर्ता कहते हैं। दादाश्री, हाँ, तो सब लाइट हाउस है और हम तो सारी दुनिया की ऑब्जर्वेटरी है। हम सारी दुनिया का साइंस ओपन कर देंगे, वो साइंटिस्ट को भी ये सब बता देंगे, फिर साइंटिस्ट सब साइंटिस्ट मान लेंगे। सच्ची बात को साइंटिस्ट भी कबूल करते हैं, सब लोग कबूल करते हैं। वो फॉरेन के सब साइंटिस्ट है, वो जहाँ तक जानते हैं उसके आगे की बात क्या है वो हमको पूछेगा तो हम बता देंगे। हमारी जो बातें हैं वो फॉरेन में कौन समझेगा? जो साइंटिस्ट है वो हमारी बात समझ जाते हैं, वो डेवलप्ड होते हैं। हम तो बोलते हैं कि सारी दुनिया के साइंटिस्ट को इकट्ठे कर दो, हम सब बता देंगे कि दुनिया क्या है, कैसी चीज़ है। सच मानस शास्त्री को भी इकट्ठे कर दो तो हम वो बता देंगे कि माइंड कैसे हो गया। सब लोग जो देखते हैं वो तो माइंड का पर्याय देखते हैं, मगर माइंड क्या है, किस तरह हो गया, किस तरह से लय होता है, वो सब बात हम बता देंगे। 96 इज द आंसर। कोई बोले कि दो रकम की तलाश करो कि कौन सी दो रकम के मल्टीप्लिकेशन से 96 आया और उसकी रीत बता दो, तो हाँ, तो हो सकता है कि नहीं, दो रकम चाहिए, वो कोई भी हो, 12 × 8 और 16 × 6, कोई भी दो रकम चाहिए। एक आदमी हमको बोलने लगा कि क्या अक्रम विज्ञान करते हो, क्रमिक मार्ग का क्या गलत है कि ये अक्रम मार्ग निकाला? तो मैंने कहा कि क्यों, आपको आपकी औरत के साथ झगड़ा हो गया है? देखिए, आप हमारे पास आओ तो आपको समझाऊँ। तो बोलने लगा कि आपकी क्या रीत है? तो मैंने बोल दिया कि सपोज 100, मानो के 100, तो जवाब आता है कि नहीं? तो वह बोलने लगा कि हम सपोज 103 बोलेगा। तो मैंने बोल दिया कि कोई भी रकम सापेक्ष करो, सपोज करो, कोई भी रकम सपोज करो, जवाब आता है कि नहीं? वो मैथमेटिक्स में होता है ना, सपोज करके रकम ली, वो भी जवाब आएगा कि नहीं? प्रश्नकर्ता जवाब देते हैं, आता है दादाश्री, तो फिर इसमें क्यों नहीं आएगा? ये भी गणित ही है ना, और इसका जवाब भी है। ये सब हम आपको रूपरेखा देते हैं, सब बात बता देने से कोई फायदा नहीं है, सब बात बता देने से कोई फायदा नहीं है, हम रूट कॉज बता देते हैं। हमारी बात समझ में आती है ना? प्रश्नकर्ता, हाँ दादाश्री, हमारी हिंदी बरोबर ठीक नहीं है ना? प्रश्नकर्ता, नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपकी हिंदी अच्छी सी बोल रहे हैं, आप हिंदी अच्छी ही बोल रहे हैं। दादाश्री, हमको हिंदी बोलने का नहीं आता। प्रश्नकर्ता, नहीं, आपकी हिंदी बहुत मीठी है, आप बोलिए। दादाश्री, मीठी तो मेरी वाणी है, हिंदी नहीं, मेरी वाणी मीठी है। अभी नेक्स्ट हेडिंग आता है, पेज 10 पे, ज्ञानी पुरुष की पहचान। वॉल आप्तवाणी के जो सब सेक्शंस किए हुए हैं, मैं दिस इज़ द फर्स्ट सब सेक्शन, हिंदी की एक आप्तवाणी थी, इसके सब सेक्शन करके ये रीडेबल लिटिल बुकलेट्स बनाई गई हैं, प्रोड्यूस्ड एंड अवेलेबल थ्रू दादा भगवान फाउंडेशन। और इसका प्राप्ति स्थान है info@dadabhagwan DADABHAGWAN.org, dadabhagwan.org will give you all the details and of availability of this book. इसका संपादन किया है पूज्य डॉक्टर निरुबेन अमीन ने। गुरु और ज्ञानी। प्रश्नकर्ता, हमारे गुरु हैं वो ही मेरे इष्ट देव है, मेरे रोम रोम में वो ही है, मैं उनसे दूर न हो जाऊँ, ऐसा कुछ हमें कर दो, ऐसा कुछ हमें कर दो। दादाश्री, वो ही करने का है, कुछ जुदा होने की ज़रूरत ही नहीं है। जुदा होंगे तो आपका जो व्यवहार है ना, वो सब खत्म हो जाएगा, उनके आधार पर व्यवहार रहा है। हाँ, तो जुदा होने का ही नहीं है, उनकी आराधना करनी है। प्रश्नकर्ता, आपके पास से ये ज्ञान प्राप्ति करना और मेरे गुरु की आराधना चालू रखनी है, वो एक साथ दो चीज़ें कैसे रह सकेगी सकेंगी? दादाश्री, ये मोक्ष के लिए चाहिए और वो गुरु तो व्यवहार के लिए चाहिए, व्यवहार भी तो चलाना चाहिए ना? प्रश्न करते हैं, मेरे गुरु तो मोक्ष के लिए ही है। दादाश्री, नहीं नहीं, गुरु सब व्यवहार के लिए ही होते हैं, मोक्ष के लिए तो ज्ञानी पुरुष होते हैं। प्रश्नकर्ता, व्यवहार के लिए तो देवी देवताओं की उपासना करते हैं और मोक्ष के लिए गुरु है ना? दादाश्री, नहीं, गुरु हो वो भी व्यवहार ही है, सब व्यवहार ही है। प्रश्नकर्ता, हमारे गुरु की मूर्ति का ध्यान करता हूँ तो जब वहाँ ध्यान ठीक करेक्ट हो जाता है तब हमको ऐसे मन में लाइट लाइट हो जाती है, वो क्या है? प्रश्नकर्ता, दादाश्री, वो सब बहुत चीज़ें होती हैं, तरह तरह की लाइट होती हैं, लेकिन वो सब पुद्गल है और वो सब तुम्हारी एकाग्रता के लिए फ़ायदेमंद है और आगे जाने के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन वहाँ सच्ची बात नहीं मिलेगी। इससे एकाग्रता होती है, शक्ति बढ़ती है, लेकिन ऐसा कितने जन्मों से करते हो? जब तक आत्मा नहीं जाना वहाँ तक कुछ काम नहीं होगा, पूरा काम तो कभी नहीं होगा। आत्मा जानने के लिए ज्ञानी पुरुष के पास जाना चाहिए, खुद से आत्मा नहीं समझ सकते, किसी आदमी को ऐसा समझ में नहीं आता। सब लोग जैसी आत्मा मानते हैं ऐसी आत्मा है ही नहीं, आत्मा और चीज़ है, वो ही परमात्मा है। प्रश्नकर्ता, तो ये सब चीज़ें क्या होती है जो मुझे अनुभव में आती है, वो क्या चीज़ है? दादाश्री, वो सब मैकेनिकल है, ऐसा चित्त चमत्कार बहुत लोगों को होता है, ऐसे बहुत लोग हमें मिलते हैं, उसको फिर हम बोलते हैं कि भाई ये चित्त चमत्कार से बहुत आगे जाने का है, अभी आपका चित्त चमत्कार का स्टेशन आया है, वो बात अच्छी है, इससे एकाग्रता रहती है, थोड़ा पाप जल जाता है, लेकिन इससे तो बहुत आगे जाने का है। प्रश्नकर्ता, फिर आगे रास्ता तो मिलेगा ना? दादाश्री, ऐसा कितने ही जन्मों से रास्ते पर चलते हैं मगर सच्ची बात नहीं मिलती, ये सब रास्ते का ही है, रास्ते के बाहर कुछ नहीं है, लेकिन कभी किसी जन्म में कोई दफ़े कोई कुसंग मिल जाता है तो फिर नीचे भी गिर जाता है, उसका कोई ठिकाना नहीं रहता है, ऐसा वो ऊपर भी उठता है, फिर कुसंग मिलता है तो फिर नीचे भी गिर जाता है। खुद का ज्ञान, खुद कौन है, किसने ये दुनिया बनाई, ये दुनिया कैसे चलती है, कौन चलाता है, ये सब ज्ञान प्राप्त हो गया फिर रास्ता करेक्ट हो गया, फिर छुटकारा हो जाता है, मुक्ति हो जाती है। नेक्स्ट हेडिंग आता है, खुली आंख से जागृत कौन, पेज 11। जागृति तो पूरी होनी चाहिए ना, दादाश्री कह रहे हैं, जागृति तो पूरी होनी चाहिए ना, अभी तक तो आपको संसार की ही जागृति है, संसार की जागृति हो वह विनाशी चीज की रमणता करता है। सब लोग को संसार की जागृति होती है, वो भी पूरी जागृति नहीं है। जिसको संसार की पूरी जागृति हो उसको घर में किसी के साथ झगड़े नहीं होते हैं, मतभेद नहीं होते हैं, लेकिन झगड़े मतभेद तो होते हैं, तो ये सब लोग अभी तो नींद में ही है, खुली आँख से नींद में ही व्यापार करते हैं, झगड़ा करते हैं, शादी भी करते हैं, उपदेश भी देते हैं और अनशन भी नींद में ही करते हैं। आप डॉक्टर हुए तो वो जागृत अवस्था में हुए कि नींद में हुए? प्रश्नकर्ता, जागृत में। दादाश्री, अभी भी आप जागृत नहीं हैं, मेरे सामने बैठे हैं तो भी जागृत नहीं हैं। नींद दो प्रकार की है, एक आदमी को देह का भी भान चला जाता है वो सबके लिए नींद है, दूसरी नींद खुली आंख से रहती है, वो नींद किसी को नहीं गई है। जागृत किसे बोला जाता है कि जो दूसरे किसी को इतना भी नुकसान ना करे और अपना खुद का इतना भी नुकसान न होने दे, उसको जागृत बोला जाता है। ये तो इधर बात बढ़ाते हैं, ये तो इधर बाल बढ़ाते हैं और उधर दाढ़ी सफा कराते हैं, कौन से व्यापार में फायदा है? इसको निकालने में फायदा है कि उसको इसको बढ़ाने में फायदा है, वो आप जानते नहीं हैं। सब लोग ऐसा करते हैं, वैसा ही देख देख कर आप भी करते हैं। कोई जागृत आदमी देखा है आपने कभी तक? कोई जागृत आदमी आपने देखा है अभी तक? प्रश्न करता है, कोई जागृत होगा यहाँ नहीं, वो हम कैसे बोल सकते हैं? दादाश्री, सारी दुनिया नींद में है, जिसको सब कुछ बैलेंस रहता है वह जागृत है, नहीं तो अपना खुद का अहित ही करता है। हित में जाने का प्रयत्न करते हैं मगर जानते नहीं कि मेरा हित किस में है। ये दूसरी नींद है, उसको भाव निंद्रा बोलते हैं। ये दूसरी जो नींद है उसको भाव निंद्रा बोलते हैं। सारी दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसकी आंख खुली हो। भाव निंद्रा की आंख खुली तो फिर सब काम हो गया। आपका क्या नाम है? प्रश्नकर्ता जवाब देते हैं, रविंद्र। दादाश्री, एक्सक्यूज मी, आप खुद रविंद्र हो कि दूसरा कुछ हो? प्रश्नकर्ता, वह मालूम नहीं है। दादाश्री, नींद की ऐसी ही बात है, ये सब नींद में ही बात करते हैं। खुद की पहचान हो गई तो फिर जगत में कोई बड़ा छोटा नहीं है। हमको तो कोई बड़ा छोटा दिखता ही नहीं है। जेब काटने वाला भी हमको निर्दोष ही दिखता है, क्योंकि हम निंद्रा में से जागृत हुए हैं। जो निंद्रा में से संपूर्ण जागृत हुआ हो उसकी एक सेकंड भी भूल नहीं होती। जिसको स्वरूप की पहचान हो गई उनकी आंखें थोड़ी थोड़ी खुलती हैं, फिर सत्संग में बैठकर आंखें पूरी खुल जाएगी, मगर खुद को भरोसा होगा हो गया कि कुछ दिखा है, विश्व दिखा है। ये निंद्रा खुली हो जाए तो जगत क्या चीज़ है वो मालूम हो जाता है। बाहर सब चलता है, वो निंद्रा में ही चलता है। किसी को गाढ़ निंद्रा है तो किसी को ज़रा कम है। कोई स्वप्न दशा में है, कोई मूर्छा जैसी निंद्रा में है। सबकी समान निंद्रा नहीं होती। जो जागृत है वो सब कुछ जान सकता है, सब कुछ देख सकता है। आदमी का कोई ऊपरी ही नहीं है। हाँ, देवलोक ऊपरी हैं, लेकिन देवलोक के हाथ में भी स्वसत्ता नहीं है। जो कोई जागृत हो जाए तो उसके हाथ में स्वसत्ता आ जाती है। सद्गुरु जागृत होना चाहिए। भगवान ने जागृत होने के लिए बोल दिया है कि जागृत हो जाओ। जो आदमी जागृत है उसके पास बैठने से, उसकी कृपा से जागृत हो सकता है। दूसरा कोई इलाज नहीं है। जिसका क्रोध, मान, माया, लोभ खलास हो गया है वो जागृत हो जाता है। क्रोध, मान, माया, लोभ जहाँ नहीं है वहाँ जागृत है, और जहाँ क्रोध, मान, माया, लोभ है वहाँ निंद्रा है। जो अपनी खुद की ही बुराई करता है, नुकसान करता है और दूसरों का भी नुकसान करता है, ऐसी निंद्रा वाला देखा है कि नहीं देखा आपने, क्रोध मान माया लोभ खलास हो जाए वो जागृत हो गया। अगर तो ज्ञानी पुरुष ने जागृति दे दी तो उसकी आंखें थोड़ी खुलती है। प्रश्नकर्ता, आजकल के जमाने में किस तरह मालूम पड़े कि इनको आत्मा का रियलाइजेशन हुआ है? दादाश्री, जरा उसको छेड़ो तो मालूम हो जाएगा कि कलदार रुपया है कि बौदा है। कितने लोग बोलते हैं कि हमको मोक्ष की ज़रूरत नहीं है। मैं बोलता हूँ कि मोक्ष की तो हमको भी ज़रूरत नहीं है, मगर आपको जागृति की ज़रूरत है कि नहीं? तो वो कहता है कि हाँ हाँ जागृति की तो ज़रूरत है। प्रश्नकर्ता, मोक्ष और जागृति में क्या फ़र्क है? दादाश्री, जागृति वो ही मोक्ष है, संपूर्ण जागृति वो ही केवल ज्ञान है। जागृति इज द मदर ऑफ मोक्ष। मोक्ष यानि संपूर्ण जागृति। दुनिया के सब लोग खुली आँख से नींद में रहते हैं, खुद स्वरूप की जागृति ही नहीं है। जो धंधा करता है उसमें ही जागृति है। दूसरा, अगले भव अपना क्या होगा उसका कोई विचार भी नहीं है। ये नेक्स्ट हेडिंग आ रहा है, मोक्ष मार्ग में गुरु या ज्ञानी। प्रश्नकर्ता पूछते हैं दादाश्री को, हम एक महात्मा के पास गए थे। दादाश्री, हाँ, मगर वो डॉक्टर था या कि तुम्हारे जैसे ही जैसा ही था? डॉक्टर सर्टिफाइड होना चाहिए, ऐसा आलतू फालतू नहीं होना चाहिए। आप दवाई लेते हैं तो कोई भी आदमी के पास दवाई क्यों नहीं लेते हैं? दवाई लेने को तो अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, उसकी डिग्री क्या है वो देखते हैं। वो MBBS नहीं चलेगा, हमको तो MD चाहिए, ऐसा बोलते हैं। तो इसमें ये धर्म में भी ऐसा नहीं होना चाहिए? वो गुरु को पूछने का कि आपको ईश्वर प्राप्ति हो गई है, वो बोलेगा कि नहीं हो गई है, तो आपको दूसरी जगह पर जाने का, ऐसे तीसरी जगह पर चौथी जगह पर जाने का, कोई जगह पर तो सच्चा मिल जाएगा। प्रश्नकर्ता, हर साधु बोलता है कि हमको ईश्वर प्राप्ति हो गई है। दादाश्री, हाँ, मगर उसको ऐसा बोलने का कि हमको ईश्वर प्राप्ति करा दो तो आप सच्चा, नहीं तो तुम्हारी बात गलत है। प्रश्नकर्ता, गुरु सच्चा मिलना चाहिए? दादाश्री, हाँ, गाइड सच्चा मिलना चाहिए। गुरु तो बहुत मिलते हैं, मगर वो कैसे हैं कि जैसे ये साबुन रहता है वो कपड़े को लगाओ तो फिर टिनोपाल डालना पड़ता है, क्योंकि साबुन अपना मैल छोड़ कर जाता है। सो वो टिनोपाल से जाता है, मगर टिनोपाल अपना मैल रखता है। ऐसा इधर क्या चाहिए? जो शुद्ध है वह चाहिए, वो दूसरे को मैल ही नहीं डालता है। 15 माइल स्टेशन दूर हो तो भी नहीं मिलता है। एक बच्चे को गुरु कर लो और उसको पूछ लिया तो स्टेशन मिल जाता है। गुरु तो होना ही चाहिए। कितना बड़ा बड़ा संत लोग बोलते हैं कि गुरु की ज़रूरत नहीं। अरे, ऐसी क्या बात करते हो, गुरु की सभी जगह पर ज़रूरत है। रास्ते में, स्टेशन तक जाने में, सब जगह में गुरु की ज़रूरत है, मगर सब गुरु पेमेंट लेते हैं। वकील वो भी गुरु है, वो भी पेमेंट लेता है। प्रश्नकर्ता, आप्तवाणी में लिखा है कि पुण्य के संयोग से पैसा मिलता है, तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए वैसे सद्गुरु मिलने के लिए पुण्य की आवश्यकता है क्या? दादाश्री, हाँ, पुण्यानुबंधी पुण्य की जरूरत है, तो ही ज्ञानी मिलते हैं। ये बड़े बड़े बंगले हैं, मोटर हैं, सब कुछ है, वो पुण्य तो है, लेकिन वो पुण्यानुबंधी पुण्य नहीं है, पाप अनुबंधी पुण्य है। पापानुबंधी पुण्य यानी पुण्य तो भुगतता है, मगर बांधता है क्या? पाप। सारा दिन किसी का ले लूं, किसी का ये कर लूं, ऐसा ही सोचता है, और लबाड़ी यानी बदमाशी करता है, बिना हक का किसी का ले लेता है, उससे नया पाप बांधता है, वो पापानुबंधी पुण्य है। पुण्यानुबंधी पुण्य में अभी पुण्य है और आगे के लिए भी अच्छा विचार करता है, सत्कर्म करता है, साधु पुरुष संत पुरुष की सेवा करता है, उससे पुण्यानुबंधी पुण्य बांधता है। पुण्यानुबंधी पुण्य थोड़ा भी हो तो भी ज्ञानी पुरुष मिल जाते हैं। प्रश्नकर्ता, हिंदुस्तान में कितने साधु संत हुए हैं, उसमें किसी का सच्चा मार्ग है? किसका सच्चा मार्ग है? दादाश्री जवाब देते हैं, जिधर हार्ट यानी हृदय नहीं है, हार्टिली बात नहीं है, जिधर बुद्धि का भ्रम है, बुद्धि ज़्यादा लगती है, वहाँ पर मोक्ष मार्ग कमी होता है नहीं, कभी होता ही नहीं, वहाँ पर मोक्ष मार्ग कभी होता ही नहीं। जिधर हार्ट है, इधर ही धर्म है, हार्ट नहीं उधर धर्म ही नहीं। सच्चा मोक्ष मार्ग कौन सा है, वो भेद करने के लिए खोज करो कि बुद्धि है कि हार्टिली मार्ग है। जिधर हार्टिली मार्ग है, वहाँ हार्टिली का ज़्यादा प्रयोग है, वहाँ सच्चा मार्ग है। वो मार्ग में जाना जो सच्चा है मगर रिलेटिव मार्ग है, जो बुद्धि वाला मार्ग है, उसमें कोई फायदा नहीं है। वो मोक्ष मार्ग ही नहीं, भ्रमित करने के लिए मार्ग है। वहाँ बुद्धि ज़्यादा भ्रमित हो जाती है, सफोकेशन हो जाता है। संत पुरुष की डेफिनेशन कुछ है आपके पास? दादाश्री, सर्वज्ञ श्री ज्ञानी पुरुष हमें पूछते हैं कि आपके पास कोई संत पुरुष की डेफिनेशन है? प्रश्नकर्ता जवाब देते हैं, मन में शांति होने के लिए जो कोई मार्ग बताता है वही संत पुरुष हो सकता है। दादाश्री, शांति दो प्रकार की रहती है, एक तो जैसे बहुत ठंड पड़ती है, हिम पड़ता है, तो सब लोग सगड़ी के पास बैठते हैं, फायर प्लेस, कुकिंग प्लेस, सगड़ी के पास बैठते हैं, उतने समय ठंड नहीं लगती है, और उधर से उठ गया कि फिर ठंड लगती है। वो ऐसी शांति है, टेम्पररी शांति देता है, उसको संत पुरुष बोला जाता है, और जो परमानेंट शांति देता है उसको सत पुरुष बोला जाता है, और जो मोक्ष देता है उसको ज्ञानी पुरुष बोला जाता है। फिर से, शांति सर्वज्ञ श्री दादा भगवान दादाश्री ये बोल रहे हैं कि शांति दो प्रकार की रहती हैं, एक तो जैसे कि बहुत ठंड पड़ती है, हिम पड़ता है, तो सब लोग सगड़ी के पास बैठते हैं, उतने समय ठंडी नहीं लगती है, और उधर से उठ गए कि फिर ठंड लगती है। वो ऐसी शांति है, और टेम्पररी शांति देता है उसको संत पुरुष बोला जाता है, और जो परमानेंट शांति देता है उसको सत पुरुष बोला जाता है, और जो मोक्ष देता है उसको ज्ञानी पुरुष बोला जाता है। अब नेक्स्ट हेडिंग है पेज 17 में, ज्ञानी पुरुष की पहचान की ये पुस्तिका है, संकलन डॉक्टर निरुबहन अमीन फ्रॉम दादा भगवान फाउंडेशन से।